अहम वैश्वानुरूभूत
प्राणिनां
देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तो पचामन्नं चतुर्विधम् अहम वैश्वानुरूभूत प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचामन्नं चतुर्विधम्। पीछे से विचार करते हुए देखिए, कहा कि देखो पहले अपने में वैराग्य भाव लाओ। वैराग्य भाव लाओ उसके लिए क्या करो, असंग शस्त्र दृढ़ निक्षिप्ता, असंग शस्त्र के द्वारा, अनाशक्ति के द्वारा जहाँ जहाँ आसक्तियां हैं, हम अहम और मन भाव जहाँ जहाँ है उसको समाप्त करो। उसके बाद फिर क्या करो, तथा पदम तथ परिमार्ग तदम, तब उसके बाद में फिर उस परमात्मा को खोजो। ये दो कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए फिर कल देख रहे थे, फिर कहा भगवान ने कि एक बात तो है योगिना और दूसरी बात है यतद्दाह। पहले योग साधना करो, चित्त को शुद्ध करो, वैराग्य भाव लाओ और फिर यतनता फिर यत्न करो। किस बात का, कि परमात्मा की खोज करो, ढूंढो परमात्मा को। जब यहाँ से कल शुरू किया, भगवान ने बताया कि परमात्मा को ढूंढने के लिए उपासना प्रारंभ करो और उपासना करते करते फिर वो ज्ञान को प्राप्त हो जाए। तो ये जो यह विरक्त होकर के उपासना, उपासना से फिर भक्ति और ज्ञान प्राप्त होकर के परमात्मा को प्राप्त कर दो। उपासना करने के पहले व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे यहाँ गीता शास्त्र भगवान का ज्ञान करा रहा है, ज्ञान कराने का माना ये इस प्रकार से देखो कि सूर्य को देखो, सूर्य के प्रकाश को देखो, उसके मूल में विद्यमान सूर्य देवता को देखो और सूर्य देवता का भी मूल कारण परमात्मा को देखो। तो ऐसे सूक्ष्म दृष्टि लाओ, विचार करने की सामर्थ लाओ, उस परमात्मा से ही सूर्य देवता, सूर्य देवता से ही सूर्य का बिंब और प्रकाश। इसी प्रकार से परमात्मा, परमात्मा से चंद्रदेव, चंद्रदेव से फिर चंद्र का स्थूल शरीर और उससे फैला हुआ सर्वत्र विश्व में प्रकाश। इसी प्रकार से फिर वो परमात्मा, परमात्मा से अग्निदेव और अग्निदेव से फिर प्रकाशित ये है ताप, ये अग्नि का ताप, ये सब उसी परमात्मा से ही रूप धारण करता है। एक परमात्मा ही इस प्रकार से जितने भी प्रकाश आपको दिखाई देते हैं परमात्मा ही का प्रकाश है। लेकिन परमात्मा चेतना स्वरूप प्रकाश है, उसकी चेतना ही इस प्रकार से भौतिक प्रकाश का रूप धारण करके सर्वत्र दिख रहे हैं। ये पहले जान लो, शास्त्र के द्वारा जान लो, फिर इसी प्रकार से अनुचिंतन करो, बार बार इसी प्रकार से चिंतन करो, इसका अभ्यास करते रहो। उसके बाद फिर और निकट आ जाओ, फिर ये देखो इस पृथ्वी में भी परमात्मा व्याप्त है। ये पृथ्वी देवता भी है, जैसे सूर्य देवता तैसे पृथ्वी देवता, पृथ्वी और पृथ्वी में व्याप्त देवता और उस देवता का प्रकाशक शक्ति प्रदान करने वाला परमात्मा। परमात्मा ही पृथ्वी के अंदर पृथ्वी देवता बना बैठा है और वही इस पृथ्वी को धारण किए हुए। तब आ गए और निकट आ गए पृथ्वी, जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब देखो जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली जो वनस्पति है उसको देखो, ये वनस्पति भी जो उगती है, बढ़ती है, वो परमात्मा के कारण। इस वनस्पति में भी सोम और भूतवा रसात में कहा, वो सोम का चंद्रमा का रस बन करके इन वनस्पतियों में परमात्मा ही बैठा हुआ है। उसी परमात्मा के विद्यमान होने से वनस्पतियां उग रही हैं, बढ़ रही हैं। और देखो कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, सबके तरफ ध्यान दे जाओ और देखो कि ये विशेषता परमात्मा की है। वो ये परमात्मा इन सब वनस्पतियों में विद्यमान होकर के इन नाना रूपों में अपना नाना प्रभाव दिखा रहा है। और फिर ये वनस्पति अन्न है, चाहे हमारे क्षुधा रूपी व्याधि को मिटाने वाला अन्न हो, और चाहे रोग लग जाए तो रोग को मिटाने वाला हो, ये औषधि ये है ये हमारे शरीर में। अब देखोगे ये फिर औषधि या ये वनस्पति फिर हमारे शरीर में आ गई। अब शरीर में आ गई तो अपने शरीर में उपासना करो। अब शरीर में उपासना क्या कि देखो शरीर में जो वो हो पाचन क्रिया जो हो रही है वो परमात्मा के कारण हो रही है। पाचन क्रिया कैसे होती है? क्रिया शक्ति के द्वारा होती है। क्रिया शक्ति क्या है? प्राण। तो शरीर में प्राण, प्राण की क्रिया शक्ति और क्रिया शक्ति का संचालक परमात्मा, वही परमात्मा प्राण में क्रिया शक्ति है और मन बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। एक ही परमात्मा अलग अलग रूपों में अलग अलग रूप से उपलब्ध हो रहा है, इसलिए उपासना करो। उपासना करो मैंने अपने हृदय में इस बात का चिंतन करो कि देखो हमारे शरीर में जो ये प्राण है, ये प्राण इसमें जो क्रिया शक्ति है ये परमात्मा की है, ये हमारे मन बुद्धि में जो ज्ञान शक्ति है ये ज्ञान शक्ति परमात्मा से है। ऐसा नहीं कि प्राण अपने आप है, ऐसा नहीं कि शरीर अपने आप है, प्राण अपने आप है, ऐसा नहीं है। ये तो आपको दिखाई देता है कि शरीर अपने आप में, जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न से ही शरीर बनता है, इसलिए अन्न में कोष है, शरीर अपने आप कहाँ है? अन्न से बन रहा है। जैसे ये शरीर अन्न से बन करके परिपोषित हो रहा है, इसी प्रकार से प्राण भी परमात्मा की प्राण शक्ति के द्वारा क्रिया रूप होकर के शरीर में कार्य कर रहा है। तो ये प्राण उपासना कहलाती है। देखो उपनिषदों में अनेक उपासनाएं इसीलिए है, वहां पर भी सूर्योपासना भी है, प्राणोपासना भी है, ओंकारोपासना भी है, ये सब उपनिषदों में उपासनाएं हैं। सूर्योपासना प्रारंभिक लोगों के लिए सूर्योपासना है। यहाँ तो भगवान ने केवल यही कह दिया मुझको सूर्य समझो, लेकिन उपनिषदों में तो सूर्योपासना का पूरा विधान है कैसे उसकी उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार से प्राणोपासना है। प्राणोपासना के माने अपने प्राण का भी अनुभव करो और देखो इस प्राण में जो प्राण शक्ति क्रिया शक्ति है वो परमात्मा की है। वो परमात्मा ही प्राण बन करके, अब प्राण भी शरीर में रह करके विभिन्न प्रकार के कार्य करता, श्वास का संचालन भी प्राण से हो रहा है। तो श्वास भी अपने आप थोड़ी चल रही है, प्राण से चल रही है। प्राण भी अपने आप कार्य थोड़ी कर रहा है, परमात्मा उसमें विद्वान, उसी की शक्ति से प्राण कार्य कर रहा है। इसलिए अंत में परमात्मा को देखना पड़ता है। एक जो कॉमन फैक्टर है सब जगह विद्यमान है, जिससे कि नाना रूप नाना कार्य होते दिखाई दे रहे हैं, उस परमात्मा का चिंतन करो, वो परमात्मा है। इसलिए बोले अहम वैश्वानर भूता, मैं वैश्वानर होकर के भूता प्राणी नाम देह मासिता, व्यक्तियों के शरीर में स्थित होकर प्राण देह मासिता, उनका शरीर में स्थित होकर के प्राणी नाम प्राणियों, यहाँ प्राणी क्यों कह दिया? जीवों को प्राण का स्मरण दिलाने के लिए, क्योंकि वही परमात्मा जो वैश्वानर परमात्मा है वही प्राण में स्थित है। तो परमात्मा, फिर परमात्मा वैश्वानर, वैश्वानर से फिर ये प्राणी। वैश्वानर क्या है ये? देखो परमात्मा है, फिर ईश्वर है, ईश्वर के बाद फिर वैश्वानर है, फिर विराट है। जिसे हिरण गर्भ कहते हैं उसे वैश्वानर भी कहते हैं। इसलिए वही परमात्मा जो हो वैश्वानर के सारे विश्व में स्थित होकर के विराट होकर के सबके अंदर विद्यमान है। सबके अंदर विद्यमान है तो वो वैश्वानर भूता, वैश्वानर हो करके माने उपाधि धारण करके, प्राण की सूक्ष्म शरीर की उपाधि धारण करके वही परमात्मा हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित है और प्राण कार्य कर रहे हैं। तो ये है प्राणी नाम और प्राणापान समायुक्ता, ये है प्राण की क्रिया करता है वही और अपान की क्रिया भी करता है। जब अन्न पचता है पचामन्यम चतुर्विधम, जब पेट में अन्न पचता है तभी शरीर चलता है, पेट में अन्न ना पचे तो शरीर काय को चले। इसलिए अन्न को पचाने की आवश्यकता, अन्न को पचाने के लिए प्राण की आवश्यकता। अब इसमें अन्न के पचाने में दो प्राण कार्य करते हैं, एक तो प्राण मुख्य प्राण कार्य करता है और दूसरा अपान कार्य करता है। हम जब लेकर के कुछ अन्न मुंह में रखते हैं तो एक शक्ति उसको गले से नीचे ले जा करके पेट तक पहुंचाती है, हमें कुछ शक्ति लगती है कि अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे थोड़ी झोले में जैसे भर दिया जैसे भर गया। अरे मुंह में डालो तो उसमें फिर गटकना पड़ता है, नीचे ले जाना पड़ता है, तो प्राण की क्रियाकारी करती है, पेट में पहुंचाता है, पेट में पहुंच करके उस अन्न को पचाता है, पचाने की क्रिया होती है, उसमें जो विभिन्न प्रकार के स्राव होते हैं ग्रंथियों में उनको उत्पन्न करके फिर उसको अन्न में मिला करके और फिर अन्न को आटे में बड़ी आंच से छोटी आंच से उनको घुमाता हुआ ले जाता हुआ आगे बढ़ाता है। ये सारा कार्य जो वो प्राण ही करता है। और उसके बाद अपानकारिक कार्य क्या करता है कि जो अन्न का जो मुख्य अंश है रक्त इत्यादि बन गया, प्राणादि बन गया, मन बुद्धि बन गया, अब उसका जो स्थूलतम भाग है वो बाहर निकाल दिया। तो अपान का काम है जो बचा हुआ भाग अन्न का है, जो काम का नहीं है उसे बाहर निकाल दिया। इतना काम अन्न के पचने में होता है। यह संपूर्ण कार्य जो है वह प्राण के द्वारा होता है। उपनिषदों में तो प्राणोपासना जहां आती है वहां तो ये तो उपासना करते ही हैं कि देखो समस्त शरीर में विद्यमान प्राण है, उस प्राण के रहते ही शरीर की समस्त क्रियाएं हो रही हैं। उस उपासना में ये कहते हैं कि प्राण का संचालक है परमात्मा है, वही इसको चला रहा है। परमात्मा कैसे चला रहा है, जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं उन समस्त सूक्ष्मों में व्याप्त जो परमात्मा चैतन्य है वो हृदय गर्भ होकर के सबके सूक्ष्म शरीरों में विद्यमान है और सबके सूक्ष्म शरीरों को वही परमात्मा चला रहा है। जो हमारा जो तेजस जो है वो जीव का जो तेजस रूप है वही ईश्वर का हिरण गर्भ रूप है, इसलिए वो परमात्मा हिरण गर्भ होकर के सबके शरीरों में विद्यमान होकर के प्राण रूप होकर के अन्न इत्यादि को पचा रहा है। ये उपासना करो। और फिर कहते हैं उपासना क्या करो कि ये देखो कि प्राण में परमात्मा विद्यमान है, तो परमात्मा की इस प्राण को तो जाओ भूल, उस परमात्मा को देखो। और उपनिषद ये भी कहते हैं कि वो परमात्मा ही हिरण गर्भ होकर के वैश्वानर होकर के अन्न का पचा रहा है और अन्न का भोग कर रहा है, भोग भी वही करता है। ऐसी उपासना करो। क्यों? ये मत कहो कि अन्न मैंने खाया, ये मत कहो कि अन्न मैंने पचाया, ये मत कहो कि अन्न का उपभोग और उसको मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा मत कहो। फिर इससे क्या होगा, इससे वैराग्य आएगा। पहले शरीर में वैराग्य करो कि ये शरीर में नहीं हूं, शरीर पंच महाभूतों को एक संघात में सही थोड़ा हूं, ऐसे वैराग्य लाओ शरीर से। फिर प्राण से भी वैराग्य लाओ, ये देखो कि वो हो ये हिरण गर्भ हो करके समस्त प्राण हो करके जो विद्यमान है वही सबके अंदर विद्यमान है, प्राण ही खाता है। भूख किसको लगती है, हाँ? तो रुद्र को उपनिषद कहते हैं भूख लगती है प्राण को, खाता कौन है, प्राण। तो तुम ये क्यों कहते हो कि मैं खाता हूं, ये सब विचार करने की बातें, युक्ति लगाओ, तर्क लगाओ, कहां तक हमारा विचार जो हमारा व्यवहार चला करता है, साधारण व्यवहार जो चला करता है उसमें कितनी गलत धारणाएं होती हैं। जैसे ये बात साफ समझ में आती है कि शरीर में कैसे हो सकता है तो पंच महाभूतों का संघात, अन्न का संघात, तो फिर मैं कहां से हो गया इसमें, किस कारण से मैं बोलते, अज्ञान के कारण मैं बोलते, खाम खा करके मैं बोलते उसको जबरदस्ती करके। ऐसे प्राण जो है वो भूख प्राण को लगती है, खाता प्राण है, पचाता प्राण है, आप अपने आप को उसमें क्यों इन्वॉल्व करते, क्यों कहते हो मैं खाता हूं मैं पचाता हूं। ये सब उपनिषद की बात है। यहां पर भाव कुछ ऐसा ही लगता है, भगवान कहते हैं कि देखो सबके शरीरों में प्राणियों के अंदर स्थित होकर के मैं प्राण का पान का संचालन करके मैं ही अन्न को पचा रहा हूं। ये मत कहना कि मैंने खाया मैंने अन्न को पचाया, इसलिए भगवान कहते हैं प्राणापान समायुक्ता पचा मन्नम चतुर्विधम। चतुर्विध सब प्रकार का अन्न, चतुर्विध अनुसार चार ही प्रकार के अन्न होते हैं, वो चार प्रकार के कह दिया मैंने, सब कह दिए। अभी चार प्रकार के जो अन्न ये भी उपनिषद में बताए गए उसी को भगवान ने यहां पर बोल दिया। चोर से चर्व दे चार प्रकार के होते, चार प्रकार के प्रकार उनके कैसे उनकी उपलब्धि जैसे प्रयोग जैसे किए जाते हैं उसके आधार पर, जैसे चबा करके खाओ, फिर चूस करके खाओ, फिर चाट करके खाओ, फिर पी करके खाओ, हाँ? तो कुछ चबाया जाता है, हाँ? कुछ चाटा जाता है, कुछ चूसा जाता है। अब गन्ना जो है वो गन्ना भी खाया जाता है लेकिन क्या किया जाता है, चूसा जाता है, तो वो एक प्रकार का अन्न वो भी है। अन्न के माने यही नहीं है कि रोटी दाल अन्न बस, हाँ? ये सब जितना भी सब अन्न के माने, अत्तः अन्न, अत्त के माने खाना है, संस्कृत में अत्त के माने है खाना, और अत्त से जो खाया जाए उसका नाम अन्न, जो भी खाओ सो सब अन्न। बल्कि व्यापक अर्थ में तो अन्न यहां तक बता दिया छांदों के उपनिषद में, अगर हम आंखों से देखते हैं तो आंखों का अन्न रूप है, वो भी अन्न है। कानों से अगर हम शब्द सुनते हैं तो कान शब्द जो है कान में आते हैं, तो वो शब्द भी कान के अन्न हैं। ये व्यापक अर्थ में हो गया भाई, उतने अर्थ में ना भी लो, खाने के अर्थ में लो तो भी खाने में कम से कम इतनी बात तो ध्यान में रखो कि चार प्रकार के जो अन्न हैं, ये चारों प्रकार के अन्न चाहे चूसने के हों, चाहे खाने के हों, चाहे पीने के हों, ये सब अन्न है, ये सब अपने पेट में जाते हैं और वहां जाकर के ये पचता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो खाते हम तटक हित लागी, अपनी तट के लिए खाते हैं, और वहां पचल जठरागी, जठराग मुझको पचाती है। ये उदाहरण देते हैं तुलसीदास, कहते हैं कि हम तो जैसे भगवान का नाम दो तो भगवान का नाम तो लोगे, लेकिन भगवान का नाम आपके भीतर चित्त को शुद्ध करेगा, परमात्मा का ज्ञान भक्ति उत्पन्न करेगा, ये अपने भीतर कैसे करेगा, जैसे कि अपने भीतर अन्न पचा करता है, अपने आप तो खा लिया बस उसके बाद छुट्टी, लेकिन अन्न प्राण जो है लगा है अपने अन्न को पचाने में, 24 घंटे उसी में जुटा हुआ है, पचा रहा है पचा रहा है, लेकिन उसके साथ में हम थोड़ी जुटे हुए कि नहीं हमें अन्न पचाना है इसलिए हम बैठे हुए, क्यों बैठे हुए कि हम अन्न पचा रहे हैं बैठे हुए, ऐसे थोड़े होता है। अन्न तो अपने आप भीतर अपने पच रहा है, प्राण पचा रहा है, हम फुर्सत हैं उनको। बस इस प्रकार से देखो ये कि ये है प्राण जो है, ये है अन्न को पचाता है, और अपने आप को इस प्राण से अलग देखने का अभ्यास करो, ये उपासना है। जब उपासना करते हैं तो उपासना के साथ साथ जो जिसकी उपासना करते हैं उससे श्रेष्ठ की तरफ ध्यान ले जाओ, और जिसकी उपासना जिस स्तर पर जिस प्रतीक की उपासना कर रहे हैं उसमें नमम के भाव रखो कि ये मैं नहीं हूं, ये प्राण में ये भाव रखो कि ये प्राण मैं नहीं हूं, प्राण का संचालक प्रकाशक परमात्मा है, प्राण ही अन्न को पचा रहा है, मैं अन्न को नहीं पचा रहा हूं, ऐसी बात दर धारणा रखो। अब ये तो हो गया पचान्नम चतुर्विधम, सब प्रकार से अन्न के पचाने का कार्य हो रहा, तो अब ये उपासना कहाँ चल रही है, अपने यहां से हजारों मील दूर आकाश में थोड़ी हो रही है, अपने भीतर ही अपने शरीर के भीतर आकर देखो। पहले बाहर जिसकी उपासना कर रहे थे जिस परमात्मा की, उसी परमात्मा की उपासना जब अन्न हमारे पेट में गया, जहां भगवान ने पिछले चरण में कहा कि पुष्णान चौषधि सर्वास भूतारात्म कहा, तो अन्न में भी परमात्मा घुस गया और अन्न उसने अब अन्न का रूप धारण कर लिया, और जब वो हमारे पेट में पहुंचा तो वही परमात्मा प्राण बनते उस अन्न को बचाने लगा। तो आज हमारी उपासना का केंद्र बिंदु शरीर के भीतर आ गया, वही उपासना करो। अब अपने आप अपने अंदर प्राण को भी देखो, प्राण की क्रियाओं को देखो, पाचन क्रिया को देखो, इसको सबको देखते रहो दूर से, और उपासना करते रहो कि ये सब कार्य कैसे हो रहा है, कौन शक्ति इस कार्य को कर रही है, देखो ये परमात्मा सब कर रहा है, इस प्रकार से देखो। इसके बाद अब कहते हैं फिर क्या करो, अब आगे की उपासना देखो।